नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। मेरा नाम निधि है और मैं अभी सिर्फ 26 साल की हूँ। अब मेरी शादी हो चुकी है और मेरी एक 3 साल की बेटी भी है। आज जो भी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो मेरे साथ 10 साल पहले हुआ था। मैं एक छोटे से गांव में रहती थी। स्कूल में पढ़ने जाने के लिए पास के गाँव में जाना पड़ता था। मैं रोज साइकिल से स्कूल आती जाती थी। मेरा एक फ्रेंड सुरेश भी मेरे साथ पढ़ता था। मैं और सुरेश एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। मेरे शरीर का विकास ना दूसरी लड़कियों से थोड़ा जल्दी हो गया था, जिससे मैं कम उम्र में ही मैच्योर लगती थी। मेरा बदन भरा हुआ और गदराया हुआ लगता था। बड़ी बड़ी चुच्चियां, गोल गोल बाहर को निकले हुए जूतड़, पतली कमर, गोरा रंग, बड़ी मस्तमाल लगती थी मैं। सुरेश और मैं कभी कभी स्कूल से तालाब पर जाया करते थे और उधर अकेलेपन का फायदा उठाकर हम एक दूसरे को चूम लेते थे। हमारे बीच धीरे धीरे ये सब चीजें बढ़ने लगी और अब सुरेश मेरे मम्मो को अपने मुंह में लेकर चूसता और दबा देता था और अब तो मेरी सलवार में हाथ डालकर मेरी चूत भी रगड़ देता। इससे मुझे बहुत अच्छा लगता था। वो अपनी एक उंगली मेरी चूत में धीरे धीरे अंदर बाहर करता और मैं उसे जोर से पकड़ लेती थी। इतना सब कुछ होने के बाद भी सुरेश ने मेरी तड़पती हुई प्यासी चूत में अब तक अपना लड़ नहीं डाला था। सुरेश की इस बात से मैं कुछ कसम साँसती रहती थी। अब लड़की थी तो अपने मुंह से तो कह नहीं दूंगी ना कि मुझे चोट दो। एक बार मैंने सुरेश की पैंट के ऊपर से उसका लंड हाथ से सहलाया, शायद उसको समझ आ जाए कि मैं उससे जुड़ना चाहती हूँ। मगर उस भोंदू ने तो मेरी बात कभी समझी ही नहीं। उस दिन मुझे उसकी पैंट गीली सी लगी तो मैं समझ गई कि इसका लंड भी पानी पानी हो गया। और अब उसकी इस ना चोदने की वजह से ना मुझे उस पर बहुत चिढ़ आती थी। स्कूल में मेरी क्लास में एक लड़का बसंत भी पढ़ता था। उसका बाप गांव का एक पैसे वाला किसान था। उसके पास बहुत सारी चीजें थी, जैसे कार वगैरह सब कुछ। वो भी मुझे बड़ी हसरत से देखता था। कई बार उसने मुझे अपनी ओर खींचने की कोशिश की मगर मुझे न जाने क्यों ऐसा लगता था कि मुझे चोद कर छोड़ देगा, जबकि सुरेश तो मुझसे प्यार करता था। दूसरी तरफ सुरेश और बसंत आपस में फ्रेंड्स थे। सुरेश के साथ साथ अक्सर बसंत मेरे पास आकर बैठ जाता था और वो हमेशा मेरे लिए महंगी महंगी चॉकलेट्स वगैरह लाता था। चॉकलेट्स खाना तो पसंद था लेकिन मैं बसंत से लेते टाइम कुछ सकुचाती थी तो सुरेश जबरन मुझे चॉकलेट लेने के लिए कह देता था और मैं भी बसंत की तरफ देख कर आँखों ही आँखों में उसे थैंक यू कह देती थी। अब मुझे कुछ कुछ लगने लगा था कि अगर देखो सुरेश मुझे नहीं छोड़ेगा ना तो मैं बसंत से ही जुट जाऊंगी। तो अब ठंड का मौसम था और नया साल आने वाला था। सुरेश ने मुझे एक फोन देने का प्रॉमिस किया था जिससे हम दोनों कभी कभी एक दूसरे से बातें कर सकते थे। उसने मुझसे भी कुछ पैसे देने के लिए कहा। मैंने अपनी गुल्लक में से निकाल कर उसे 500 रुपये दिए। सुरेश ने मुझे 1 तारीख को स्कूल नहीं जाने के बजाय तालाब वाली जगह पर मिलने को कहा। तो मैं सुबह अपनी साइकिल से 8:30 बजे घर से निकलकर तालाब पर पहुंच गई। उस दिन ठंड के साथ साथ ना कोहरा बहुत था। थोड़ी सी दूरी का भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी मुझे सामने किसी गाड़ी की लाइट चमकती हुई दिखाई दी। मैं एक तरफ रुक गई और उसके निकल जाने तक रुकी रही। तभी एक कार मेरे पास आकर रुकी। सुरेश पीछे वाली सीट से बाहर निकला और मुझसे अपने साथ चलने के लिए कहा। ये कार किसी और की नहीं बल्कि बसंत की थी। मुझे ना बड़ा अजीब सा लगा। इससे पहले मैं कभी कार में बैठी भी नहीं थी। मेरी साइकिल को सुरेश ने पेड़ से बांधकर मुझे अपने साथ कार की पिछली सीट पर बिठा लिया। मैं चुपचाप बैठ गई। बसंत कार चला रहा था। मैंने बाहर झांकने की कोशिश की तो गाड़ी के शीशों पर ओस जमी थी, कुछ दिख ही नहीं रहा था। सुरेश मेरे साथ बैठा था और जांघों पर हाथ फेर रहा था। और मैं आंखों में आंखों में उस पर गुस्सा कर रही थी कि बिना बताए ये किधर का प्रोग्राम बना लो। तभी अचानक से मैंने हिम्मत जुटाकर बोल ही दिया, तुम लोग मुझे किधर लेकर जा रहे हो, पहले मुझे बताओ वरना मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तो बसंत ने गाड़ी रोक दी और अब तक हम गांव से बहुत दूर आ गए थे। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं हूं कहां। मैंने सुरेश से कहा, प्लीज मुझे बताओ ना हम लोग कहां जा रहे हैं। तो सुरेश ने कहा, तो चिंता क्यों कर रही है, हम लोग नए साल की मस्ती में कुछ दूर तक घूमेंगे, थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। और मैं इस बात से चुप हो गई, तब भी मेरा मन नहीं लग रहा था। थोड़ी देर बाद बसंत ने कार को एक कच्चे रास्ते पर उतार दिया। कोई 2 किलोमीटर अंदर जाकर उसने गाड़ी रोक दी। उधर चारों तरफ खेत ही खेत थे, पास ही एक मिट्टी से बना हुआ कच्चा घर भी था। उसके सामने 2 लोग बैठे हुए थे और अंगीठी से आग सेंक रहे थे, शायद उधर के चौकीदार थे। उन्होंने बसंत को देखा तो उसके पैर छूकर नमस्ते की, जोहार पहुंचे दाऊ साहेब, नया साल मुबारक हो। बसंत ने उन दोनों को कहा, तुम्हें भी नया साल मुबारक हो, जाओ अब खेतों में घूमाओ। और वो दोनों वहां से चले गए। बसंत ने मुझे सुरेश के साथ अंदर जाने का इशारा किया। उसका इशारा पाकर सुरेश मुझे उसी कच्चे मकान के अंदर ले गया। उसमें एक चारपाई बिछी थी, दूसरी तरफ पुआल और भूसे का ढेर पड़ा था। सुरेश कमरे के अंदर ले जाते ही मुझे चूमने लगा। उसके ठंडे ठंडे हाथ मेरी कमर पर चल रहे थे। उसकी उंगलियों ने मेरी सलवार का नाड़ा पकड़कर खींच दिया और अगले ही पल मेरी सलवार नीचे गिर गई। मैं जब तक कुछ समझ पाती कि उसके ठंडे हाथ मेरी चड्डी में घुसकर मेरी चूत को सहलाने लगे। मुझे एकदम से सुरेश के मर्द बन जाने पर हैरानी हो रही थी, पर मैं कुछ बोली नहीं। उस टाइम बसंत भी कमरे के अंदर आया और सुरेश मुझे उसी हालत में छोड़कर बाहर चला गया। और मैं सक पका गई कि ये क्या हो रहा है। तभी बसंत मेरे पास आकर मेरे बालों में हाथ फेरने लगा। उनका, बसंत तुम ये क्या कर रहे हो, छोड़ दो, जाने दो मुझे। निधि तो अपने दिल की बात मुझसे कह सकती है, मुझे मालूम है कि तुम जो सुरेश से चाहते हो वो तुम्हें नहीं दे सकता। बल्कि मैं तुम्हें सच बताऊं तो सुरेश तुम्हारी कामना पूर्ति में अयोग्य है। दोस्तों, उसके इस खुलासे से तो मैं एकदम चौंक गई। मैंने कहा, क्या ये तुम क्या कह रहे हो बसंत, मैंने खुद देखा है उसके पास सब कुछ है। मैं बसंत को सुरेश के लड़के के बारे में बताना चाहती थी। हाँ, सुरेश ने मुझे सब बताया, मगर निधि मैं भी तुम्हें बता दूं कि मैं अपने दोस्त की खातिर तुमको पूरी तरह से खुश कर सकता हूँ। देखो आज नया साल है और हमारे अलावा यहाँ कोई नहीं, और तू चिंता मत कर, सुरेश ने तुझे जो चीज़ देने का वादा किया वो मैं तुझे दूंगा। ये बोलकर बसंत ने मेरी चड्डी नीचे खींच दी और मेरी बड़ी बड़ी घुंघरालों काली झाटों में छिपी मेरी कोमल चूत उसके सामने नुमाया हो गई। और मैं एकदम से लजा गई और मैंने बसंत से कहा, ये क्या कर रहे हो, जरा रुको दो। मगर अब तक बसंत ने मेरी चूत की लकीर पर अपनी उंगली रख दी थी। अगले ही पल उसने मेरी उंगली से मेरी चूत की भाकों को खोल दिया। वो नीचे बैठ गया और उसने मेरी चूत के दोनों होठों को खोलकर अपने मुंह में लगा लिया। उसने अपनी जीभ मेरी चूत में डाल दी और मेरी चूत को चाटने लगा। मेरी चूत हल्की चिपचिपी होने लगी थी और उसमें से निकलने वाली मादक गंध बसंत को मदहोश कर रही थी। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली थी और बसंत के सर पर अपना हाथ रखते हुए अपनी टांगे खोलकर उसे अपनी चूत में घुसाने की कोशिश करने लगी। मुझे ना उस वक्त कुछ होश ही नहीं था। उधर बसंत भी पागलों की तरह मेरी चूत के दाने को होठों से खींच खींच कर चूस रहा था। मैं एकदम से गर्मा गई और चूतने के लिए मचल उठी। तभी बसंत ने मेरी चूत से अपना हाथ हटाया और खड़ा हो गया। मैं उसे देखने लगी तो उसने मेरा स्वेटर और कुर्ता उतार दिया। मेरे बदन पर सिर्फ एक ब्रा रह गई जिसमें मेरे दोनों सुडौल कबूतर कैद थे। वो मेरे रस भरे मम्मों को देखकर एकदम से पगला गया। उसके तो मुंह में पानी आ गया और वो बुदबुदाने लगा, आह आज तो तेरे इन रस भरे संतरों को पूरा निचोड़ डालूंगा, कितनी खूबसूरत है तू, तेरा बदन बड़ा सेक्सी है निधि। ये बोलकर बसंत ने मेरी ब्रा से एक दूध बाहर निकाला और उसे दबाने लगा। मैं मस्त होने लगी और उसकी आंखों में आए गुलाबी डोरों को देखने लगी। बसंत ने मुझे खटिया पर धक्का देते हुए लिटाया, फिर मेरे एक गुलाबी निप्पल को जीभ से चाटकर उसे अपने मुंह में भर लिया और किसी बच्चे की तरह मेरा दूध चूसने लगा। साथ ही उसने अपने दूसरे हाथ से मेरा दूसरा दूध पकड़ा और उसे मसलते हुए मेरे ऊपर चढ़ गया। उसके पायजामे के अंदर से उसका मोटा लंड मेरी चूत पर रगड़ मार रहा था। दोस्तों, कुछ देर में उठा, पुआल के ढेर पर ले गया। उसने अपना पजामा नीचे किया और मेरी टांगों के बीच में आकर बैठ गया। मेरी टांगे फैलाकर घुटनों को मोड़ा और अपने मोटे लंड को मेरी चूत की फांकों में फंसा दिया। पहली बार किसी लंड के स्पर्श से मेरी सांसें रुक गई। लंड लेना भी चाहती थी और फट जाने का डर भी था। जैसे ही बसंत ने लंड को झटका दिया, मेरी तो आवाज गले में घुटके रह गई। उसके झटके में अपना लंड मेरी चूत के अंदर उतार दिया। मैंने उसे जोर से पकड़ लिया और मेरी आंखों में आंसू आ गए। दूसरे पल बसंत ने बड़ी बेरहमी से एक और झटका दे मारा। अब मेरी आवाज निकल पड़ी, आह मम्मी मर गई। मैं बसंत से छूटने की कोशिश कर रही थी, मगर उसकी पकड़ मेरी कमर पर बहुत मजबूत थी। उसने बिना कोई परवाह किए धक्का देना चालू किया और वो मेरी चूत में ताबड़तोड़ धक्के मारता चला गया। मैं बेबस चिड़िया की तरह उसकी बलिष्ठ भुजाओं में पिस कर रह गई। मेरी चूत ने अपना सारा रस दो बार छोड़ दिया, मगर बसंत का इंजन किसी सुपरफास्ट ट्रेन की तरह मेरी चूत की बखिया उधेड़ने में सरपट दौड़ रहा था। कुछ 15 मिनट तक मुझे धक्का पेल छोड़ने के बाद बसंत ने अपने लंड को चूत से बाहर खींचा और उसका सारा गर्मा गर्म माल मेरी चूत के ऊपर झाड़ दिया। वो झड़ कर मेरे ऊपर लेट गया। मैंने भी उसे अपनी बाहों में समेट लिया। थोड़ी देर बाद फिर से मेरी चुदाई शुरू हुई। इस बार बसंत ने मुझे 20 मिनट तक रंगा। मैं बहुत मस्त हो गई थी। उसके बाद सुरेश अंदर आया और मेरी तरफ देखने लगा। मुझे उस पर दया आ गई। बसंत ने कहा, निधि एक बार तू कोशिश कर ले, शायद सुरेश किसी काम का निकल आए। मैंने उसे अपने पास खींचकर नंगा किया और उसका लंड चूसने लगा। पहली बार में तो उसने एक ही मिनट में अपना रस छोड़ दिया। फिर भी मैंने सुरेश के लंड की चुसाई जारी रखी। उसकी गोटियों को भी चूसा तो सुरेश का लंड खड़ा हो गया। उस दिन ये हैप्पी न्यू ईयर 2 बजे तक चला। आज मैं उन दोनों के लंड से जुड़कर बहुत खुश थी। फिर गांव सेक्स के बाद हम सभी ने जाने की तैयारी की। बसंत ने मुझे एक नोकिया का पुराना फ़ोन दिया और 1000 रुपये भी। मैंने रुपये लेने से मना किया तो बसंत बोला, तुम्हारे 500 रुपये बढ़कर 1000 हो गए। तो मुझसे खुलकर मिलनी थी, सच में तुझे मेरे साथ बहुत मज़ा आएगा, प्लीज़ मुझसे मिलती रहा कर। हम तीनों कार से वापस आने लगे। करीब 2:30 बजे उसने मुझे फिर से तालाब के पास छोड़ दिया। उधर मैं साइकिल उठाकर घर आ गई। उस रात को बसंत का फ़ोन मेरे फ़ोन पर आया। वो आज दिन में जो भी हुआ था उसी के बारे में बात कर रहा था और मैं भी सुरेश की जगह बसंत की मर्दानगी की कायल हो गई और उसकी गर्लफ्रेंड बन गई। आपने मेरी कुंवारी अलहड़ जवानी की चूत चुदाई की गाँव सेक्स कहानी सुनी, कैसा लगा बताइएगा ज़रूर।